एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलियाई लोगों के अनुसार सबसे बड़ी वैश्विक चिंता है, यहाँ तक कि सैन्य संघर्ष से भी बड़ी। यह तब आता है जब विश्व भर के नेता इजिप्ट में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता के लिए 6 से 18 नवंबर तक रहेंगे। जैसे जैसे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है, एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि ये 2/3 ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए विश्व की सबसे बड़ी समस्या यानी चिंता है। कैरिटास ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आई ये रिपोर्ट तब आती है जब इजिप्ट में COP27 की जलवायु शिखर वार्ता जारी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस का कहना है,
We are on a highway to climate hell. With our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
इस रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन सैन्य संघर्ष या COVID-19 से भी बड़ी विपदा है। कैरिटास ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सचिव कर्स्टी रॉबर्टसन का कहना है कि इस शोध में यह भी पाया गया कि 3/4 सर्वेक्षण प्रतिभागियों को लगता है कि सरकार को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए।
The research said that 9 in 10 Australians believe that the biggest polluters should pay for the impact of climate change. And so, you know, when I'm out and talking to people across the Pacific Islands, across the small island nations that are really the closest neighbours to us here in Australia, they definitely feel the injustice of the current situation. You know, the small island states in the Pacific have contributed less than 1%, 0.5% of the world's greenhouse gas emissions, and yet they're the ones that are really struggling to pay with the increased frequency and severity of climate change impacts.
कम आय वाले जो देश COP27 में प्रतिभागिता कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि समृद्ध देश जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान या हानि के लिए उन देशों को फंडिंग दें जो जलवायु परिवर्तन से या तो बच नहीं सकते या इस परिवर्तन के अनुसार बदल नहीं सकते। यूरोपियाई संघ और अमरीका ने बढ़ते खर्चे के डर से अब तक ऐसी मांगों का विरोध किया है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुखिया श्री एट्रिम स्टाइनर का कहना है कि कम आय वाले देश भी इस परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष ही तो कर रहे हैं।
So many developing countries right now, in order to service their debt, are facing real challenges. In fact, UNDP published a paper just a few weeks ago, which we estimate that 54 countries are now facing potentially debt distress. That's essentially a step away from not being able to pay the interest or even to pay your debts, and that is a very serious situation.
उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक विकल्प जिस पर चर्चा जारी है वो ये है कि देशों का कर्जा इस शर्त पर माफ कर दिया जाए कि वे हरित ऊर्जा और जलवायु के अनुसार बदलाव करने के लिए योजनाओं पर काम करेंगे। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में आई बाढ़ का नुकसान करीब 62 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का है। 1,739 लोगों ने इस बाढ़ में अपनी जान गंवाई थी, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान पहले ही एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा था, लेकिन अब उन्हें वाकई वैश्विक मदद की आवश्यकता है।
We can envision a scenario where developed countries the debt that we owe developed countries, instead of transferring that into the bank accounts of richer countries, we could spend that directly on greener reconstruction, rehabilitation, on our energy transition, on adaptation, on mitigation, on our loss and damage. And the developed countries, without having to transfer hard cash, will be able to say that they're meeting their commitments on that front.
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन के केवल 0.4% के लिए ही पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के एक सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले देशों में पाकिस्तान आता है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े जिम्मेदार समृद्ध देश हैं, जहां अमरीका 24.6% तक ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, वहीं यूरोपियाई संघ पर इसका 21.7% का जिम्मा है। क्लाइमेट एनालिटिक्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दुनिया में सबसे अधिक उत्सर्जन दर में से एक है। ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट, जिसमें निर्यात भी शामिल है, चाइना से 9 के फैक्टर से अधिक, अमेरिका से 4 के फैक्टर से अधिक और भारत से 37 के फैक्टर से अधिक है। साउथ अफ्रीकी अधिवेता सुश्री ज़ुकिस्वा वाइट कॉप 27 में कहती हैं कि जलवायु न्याय वैश्विक केंद्र में होना चाहिए।
Loss and damages, by the way, which is not a matter of charity on their behalf, but a matter of equity and justice. They build their countries, which are developed today, off of our backs, while we live in underdeveloped countries facing the worst impacts of the climate crisis. But still, we have to be begging them to pay the money that belongs to us. We want climate, ecological reparations, and reparations for colonialism and scrapping of colonial debt. It is time for the global north to
कारितास ऑस्ट्रेलिया से कर्स्टी रॉबर्टसन का कहना है कि जहां बात जलवायु फंडिंग की आती है, ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी होगी।
Caritas Australia, along with Jubilee Australia, released a report last month called the Twin Clouds Report, which outlined that the Pacific region is currently facing this perfect storm of climate change induced disasters, but also skyrocketing debt burdens. And so the report calls on the Australian government to lead the international community in strengthening the ability of the Pacific nations to withstand those shocks of climate change through restructuring debt, through improving climate finance, and through funding the Pacific Resilience Facility.
2021 में अमरीकी संस्था रोडियम ग्रुप के हवाले से आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशक में चीन का उत्सर्जन दर तिगुने से भी अधिक हो गया है। चीन से जलवायु के लिए विशेष दूत ज़ेइज़ेन हुआ ने कॉप 27 में विश्व नेताओं से कहा कि चीन जलवायु हानि और नुकसान की भरपाई की फंडिंग के विकल्प का अब समर्थन करता है।
We welcome that and we also hope that we can help to address this new agenda item. First we set up this mechanism and then we can discuss how to resolve it in a more in-depth and sustainable way. That depends on our negotiations and then to find solutions. But first and foremost, China's position is very clear. China supports this.
हालांकि उन्होंने बाद में ये स्पष्ट किया कि ये फंडिंग वित्तीय नहीं बल्कि समर्थन के रूप में होगी। कॉप 27 शिखर वार्ता 18 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। SBS न्यूज से ओमो बेलो की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया है वृषाली जैन ने।